यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन भागवतम की ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया भगवतीतमा श्लोके भक्तिरा भवति नैष्टिकी वो लैपटॉप में तो आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे वे अध्याय इनका इनका शीर्षक है समस्त अवतारों के श्रोत्र कृष्ण और श्लोक संख्या नंबर 21। तो कृपा करके मेरे पीछे इन श्लोकों को दोहराइए। तथा सप्तदशे जाता सत्यवत्याम परासरा चक्रे वेदतरो शाखा दृष्टा पुंसा अल्पमेधसा तथा सप्तदशे जाता सत्यवत्यम परासरा चक्रे वेदातरो शाखा दृष्टा पुंसो अल्पमेधसा इस प्रकार है तथा तत्पश सप्तदशे सत्रावे अवतार में जात उत्पन्न हुआ सत्यवत्यम सत्यवती के गर्भ से पराशरा पराशर मुनि द्वारा चक्रे तैयार किया वेदतरो वेदों के कल्प वृक्ष की शाखा शाखाएं दृष्टा देखकर पुंसा सामान्य जन अल्पमेधसा अल्पज्ञ। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। तत्पश्चात सत्रहवें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने देख कर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एक में वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं के विभाग कर दिया। तात्पर्य मूल रूप से वेद एक है, किंतु काफी वजन मूल रूप से वेद एक है किंतु श्रील व्यासदेव से मूल वेद को चार से विभाजित कर दिया, साम यजुर् ऋग तथा अथर्व, और तब इन सब की व्याख्याएं पुराणों तथा महाभारत जैसी विविध शाखाओं के रूप में की। सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं, उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, किंतु वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्य से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान की वर्तमान युग में शूद्र या स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। द्विजो अर्थात ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संस्कृति शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं अर्थात संस्कार संपन्न करें, किंतु वर्तमान युग के पूरे प्रभावों के कारण तथा कथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के लोग भी सुसंस्कृत नहीं रह गए। वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन। लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्र तथा स्त्रियों में की जाती है। श्रील व्यासदेव ने द्विज बंधुओं शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान से वेदों को विविध शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित किया।
हरे
होम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं ददापि स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुदा पदकमलं श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सर्वदूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुधे देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण।
तो जिस प्रकार क्रमानुसार श्रीमद् भागवतम का जो पाठ एक के बाद एक श्लोकों पर जो चर्चा चला आ रहा है, तो इस श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में जहां पर भगवान के अवतारों के विषय में चर्चा किया गया है, तो इस अध्याय का मूल जो शिक्षा ये हमें दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार कृष्ण ही समस्त अवतारों को धारण करते हैं। तो ऐसे 25 अवतारों के विषय में इसमें चर्चा आती है। तो जैसे पिछले बार आपने परशुराम के विषय में कल के दिन चर्चा किए थे, आज वही अवतार को आगे लेते हुए 17वां जो अवतार है वो है श्रीपाद वेद व्यास जी। श्रीपाद वेद व्यास जी ये हमारे परंपरा के मूल जो गुरु जो है वो है वेद व्यास। इसलिए जब भी कोई भगवान के विषय में कुछ दो शब्द कहने के लिए जब बैठते हैं तो उस आसन को कहते हैं व्यास आसन। तो उस व्यास पीठ पर बैठकर जो व्यक्ति जो कथा करता है वो वेद व्यास जी के प्रतिनिधि के रूप में माने जाते हैं। हालांकि हमारे पास योग्यता नहीं है कि हम वेद व्यास जी की तरह अपने जीवन में वेदों को उतार कर इन्हें वेद व्यास जी के तुल्य हम बन जाए, ये संभव नहीं है। इसीलिए भले ही हमारे अंदर कई त्रुटियां होने के बाद भी मगर वेद व्यास जी की हेतु की कृपा से हमें कुछ मौका मिला है कि भगवान के स्तुति को गाए, और इस स्तुति को गाने और सुनने मात्र से हमारा चित्त का परिवर्तन होता है, केवल भगवान की हरि कथा सुनने मात्र से। इसलिए कहा गया है श्रीमद् भागवतम में, यस्याम वै सूर्यमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्पते पुंसा शोक मोह भयापह। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के विषय में जैसे ही कोई सुनता है उसी क्षण उनके हृदय का जो सबसे बड़ा जो कलमश जो रोग है जो तीन तरह से उनको पीड़ित करता है वो है शोक मोह और भय। ये तीन प्रकार के जो क्लेश है ये भूत वर्तमान भविष्य इससे निकला हुआ जो तीन क्लेश है जो कि शोक जो कि भूतकाल से निकला हुआ यानी कि कुछ वस्तु हमारे पास था वो अब नहीं है तो वो शोक कर रहे हैं, और मोह जो कि वर्तमान स्थिति में जो वस्तु है उसे संतुष्ट नहीं है मोह, और भय जो कि वस्तु अब है वो कहीं भविष्य में छूट ना जाए इसका भय। ऐसे तीन प्रकार के क्लेश से जीव आत्मा इस संसार में पीड़ित है, लेकिन वो इस प्रकार के क्लेशों से त्रस्त होने के बाद भी अगर जिस व्यक्ति ने कृष्णे परम पुरुष है अगर भगवान कृष्ण के विषय में अगर कोई श्रवण करता है उसी क्षण उसके समस्त प्रकार के जो क्लेश है नष्ट हो जाते, और इतना ही नहीं केवल नष्ट ही नहीं होते भक्ति रुत्पते पुंसा साथ में उसके हृदय में भक्ति की अंकुर फूटती है। अब यहां पर इसी भगवान श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करते हुए बता रहे कि वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने इस 17वें अवतार को धारण किया और वो है शक्त्यावेश अवतार। तो भगवान के ऐसे 6 अवतार माने गए हैं, तो इसको 6 भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक है पुरुषावतार, पुरुषावतार यानी कि भगवान इस सृष्टि को सृजन करने के लिए अवतार धारण करते हैं उसको कहते हैं पुरुषावतार। जैसे शंकरशन, जैसे महाविष्णु, जैसे कारणोदक्षाय विष्णु जिसको दूसरे शब्द में कहते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु से उत्पन्न हुए गर्भोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय विष्णु के गर्भ से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मांड तैयार किया तो सारे जीवात्माओं को उत्पन्न किया, हर एक अणु में वही ब्रह्मा वही भगवान कारणोदक्षाय विष्णु शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश किए, अंडांतरस्तु परमाणु क्षीयांतरस्तु। तो ऐसे पूरे संसार का चलायमान हुआ और ये संसार की सृष्टि का सृजन हुआ तो ये तीन मुख्य विष्णु को माना जाता है जिसको कहते हैं पुरुषावतार। अब दूसरा अवतार है जिसको कहते हैं मन्वंतर अवतार, जो कि इस संसार में कुछ व्यवस्था के लिए कुछ अगर गड़बड़ या कुछ ठीक से व्यवस्था नहीं चलता तब भगवान मन्वंतर अवतार को धारण करते हैं। और तीसरा अवतार है जिसको कहते हैं गुणा अवतार, तो गुणा अवतार यानी जो कि स्वयं भगवान ने रजोगुण को संभालने के लिए ब्रह्मा जी का रूप धारण किया और वही भगवान ने शिव जी के अवतार को धारण किया जिसको कहते हैं गुणा अवतार। तो ये गुणा अवतार है। और फिर चौथा है लीला अवतार, जो कि भगवान इस धरातल में आके लीला करते ताकि बद्ध जीव उनकी लीला से आकर्षित होकर पुनः भगवत धाम जाए। और फिर पांचवा है युगा अवतार। तो भगवान स्वयं हर युग युग में आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो उस जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं युग अवतार के रूप में माने जाते हैं, तो उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का युग धर्म की स्थापना की। और जो छठा जो है वो है शक्त्यावेश अवतार, जो कि हमें यहां पर दिखाई पड़ता है। शक्त्यावेश अवतार ये इस प्रकार है कि भगवान कभी कभी साधारण जीव को या जीव आत्माओं को अपनी शक्ति प्रदान कर देते हैं। उसके द्वारा कुछ कार्य हासिल करने के लिए भगवान अपनी शक्ति उसे दे देते हैं, तो उसे कहते हैं शक्त्यावेश अवतार। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी को भी शक्त्यावेश अवतार के रूप में ऐसे आचार्यगण स्वीकारते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने ऐसे अद्भुत कार्य करके दिखाए पूरे विश्व भर में जो कि कल्पना के भी परे है। पूरे विश्व भर में उन्होंने कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की और केवल 12 साल में उन्होंने 14 बार भ्रमण किया और अनेक अनेक ग्रंथों की रचना की। और ऐसे अद्भुत कार्य उन्होंने वो भी 70 साल की आयु के बाद पश्चात किए। तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, और वो तो हुआ संभव है तो केवल भगवान की विशेष शक्ति, और वह शक्ति के द्वारा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी को भी शक्त्यावेश अवतार के रूप में स्वीकारा जाता है। तो वैसे ही यहां पर भगवान कुछ विशेष कार्यों को संपन्न करना था, इसलिए वेद व्यास जी के पास उन्होंने अपनी शक्ति प्रदान की। तो वही वेद व्यास जी जो कि शक्त्यावेश अवतार के रूप में जाने जाते हैं। तो वैसे क्या उन्होंने उनको उनसे कार्य संपन्न करवा के लेना था, तो भगवान को वेद व्यास जी से पूरे साहित्य की रचना करने के लिए, उनके द्वारा करवाने के लिए उन्होंने उनको शक्ति प्रदान किया। तो वेद व्यास जी जिन्होंने अनेक अनेक ग्रंथ की रचना की, वेद व्यासा, व्यासा यानी कि विभाजन, वेद यानी कि साहित्य। तो पहला एक ही साहित्य था जिसको कहते हैं यजुर्वेद, और इस यजुर्वेद को व्यासा विभाजन किया 4 भाग में, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। और इसके अंतर्गत 1130 अध्याय है, और हर एक अध्याय में 4 विभाग हैं, ब्राह्मण, अरण्यक, संहिता, उपनिषद। और इनके अंदर हर एक अध्याय में हर एक जो उपशाखाएं जो है वो हर एक उपशाखाओं में 1030 अध्याय है। अब इतने सारे उन्होंने साहित्य लिखे कि आज के तारीख में केवल 6% बचा हुआ है, बाकी जितने भी साहित्य थे सब मुगलों के द्वारा जला दिया गया उस साहित्य को। और ऐसे बताया जाता है कि करीब 1 साल लगा उन्हें जलाने के लिए, ये सारे साहित्य को जलाने के लिए। रोज उन लोग उसी से चूल्हा पकाते थे। तो कितने सारे ग्रंथ होंगे, और इतने सारे साहित्य में जो 6% अब जो बचा हुआ है वो भी हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है कि हम उसे पढ़कर खत्म करें। तो वेद व्यास जी ने ये सारे साहित्य इसलिए लिखे क्योंकि उन्होंने देखा कि कलयुग में कोई भी व्यक्ति सुनने के बाद याद नहीं रख सकता, क्योंकि वेद व्यास जी के पहले की ऐसा दृश्य हुआ, ऐसे हुआ करता था कि लोग केवल सुनते थे और उसे याद हो जाता था, उस उसको कहते हैं श्रुति धर। केवल सुनना तो याद हो गया। वैसे वेद व्यास जी के पहले जैसे सतयुग त्रेता द्वापर तक लोगों को लिखने की आवश्यकता पड़ती नहीं थी, लेकिन कलयुग की जो दशा इतनी भयंकर थी तो उस दशा को देखकर यहां पर जैसे कि वर्णन आता है, दृष्ट्वा पुंस अल्पमेधसा, दृष्ट्वा जैसे दृष्ट्वा पुंस अल्पमेधसा, जो लोगों के अल्प बुद्धि को देखकर, क्योंकि कलयुग में लोगों की अल्प बुद्धि होगी, लोग याद नहीं रख पाएंगे कुछ भी, इसलिए लोग नाना प्रकार से च्यवनप्राश बॉर्नविटा इत्यादि खाते ताकि कुछ याद रहे, लेकिन उतना सब खाने पीने के बाद भी फोन नंबर का 10 डिजिट भूल जाते हैं। नया फोन आया तो अपना नंबर भी याद नहीं आता है, कई दिनों तक तो याद ही नहीं आता है, फिर बाद में कुछ लोगों को तो उतना भी नहीं होता है। तो केवल हम छोटी सी बात को याद नहीं रख सकते, तब इतने सारे ग्रंथ इतने सारे श्लोक को कैसे याद रखें। और वेद व्यास जी ने इस दृश्य को देखा, प्रायण अल्पायु सभ्य कलोस्मी युगे जन मंद सुमंद मथियो मंद भाग्य उपद्रिता। कलयुग में लोगों की आयु छोटी रहेगी, प्रायण अल्पायु, क्योंकि जैसे जैसे युग बीतता है वैसे वैसे लोगों व्यक्ति जो पुंसा जो जीव आत्मा है उन लोगों की आयु भी घटती जा रही है, क्योंकि हमारी आयु जो है वो हमारे श्वास पर टिकी हुई होती है, और जो व्यक्ति जितना ज्यादा श्वास लेगा उतना ज्यादा उनकी आयु घट जाती है, इसलिए अस्थमा रोग वाले जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते हैं क्योंकि उनकी आयु जल्दी खत्म हो जाती है। और जो योगी जो होते हैं वो अपने श्वास को रोक देते हैं और कई वर्ष तक जीते हैं। तो व्यक्ति कलयुग में उसकी आयु क्यों घटती है, क्योंकि जितना जीव आत्मा भोग करता है उतना उसका श्वास तेजी रफ्तार से चलता है, तो विषय भोग से उनकी आयु घटती जाती है। और कलयुग में जीव आत्मा केवल 24 घंटा विषय भोग में लगा हुआ है, अगर स्थूल नहीं तो मानसिक रूप में, हर रूप में वो केवल विषय भोग में लगा हुआ है, इसी कारण से उसकी आयु घटती जा रही है। और कलयुग में ऐसी दशा होगी कि केवल 20 साल लोग जिएंगे, यानी कि 6-7 साल में उसके बीवी बच्चे हो जाएंगे और 13-14 साल में वो काम से रिटायर हो जाएगा, बिस्तर पकड़ लेगा, और 17-18 साल में राम नाम सत्य, केवल इतनी छोटी आयु रहेगी। और इसलिए कलयुग की ऐसी दशा, प्रायण अल्पायुष कलो अस्मि युगे जना मंद सुमंद मतियो, उनका भाग्य दुर्भाग्य होगा, जो उसे मार्ग बताने वाला होगा वो भी पथ भ्रष्ट करेगा, और इतना ही नहीं वो पूरी तरह से परेशान रहेगा उपद्रिता। और ऐसे व्यक्ति इस कलयुग की ऐसी दशा होने के कारण वेद व्यास जी ने ग्रंथ की रचना की, और उस साहित्य की रचना करने के लिए वेद व्यास जी के पास समय कम था। तो ऐसे वर्णन आता है कि वेद व्यास जी ने गणेश जी को आह्वान किया, गणेश जी से निवेदन किया कि आप आइए और साहित्य की रचना करिए क्योंकि समय बड़ा कम है। तो गणेश जी जैसे ही वहां पर उपस्थित हुए उसी क्षण गणेश जी ने कहा कि मैं एक शर्त पे ग्रंथ लिखूंगा। बोले क्या? बोले जहां पर तुम बोलना बंद करोगे वहां पर मेरा कलम रुकेगा, यानी कि एक टक तुम्हें बोलते ही जाना। तो वेद व्यास जी ने भी अपना बुद्धि लगाया, तो उन्होंने भी कह दिया ठीक है मैं मानता हूं तुम्हारा शर्त, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। क्या? मेरा यह शर्त है कि तुम जब लिखते हो तो सोच समझ के लिखो, यानी कि एक ही श्लोक समझने के लिए तो हमारा पूरा एक जीवन कम पड़ेगा, अब यहां पर गणेश जी को कहा कि जो तुम लिखते हो सोच समझ के लिखो, और इतना बोला और यहां पर गणेश जी भी उस शर्त से मंजूर होकर वो भी ग्रंथ लिखना शुरू किए। तो ऐसे वर्णन आता है कि उनके पास उस समय कलम नहीं था, तो कलम नहीं रहने के कारण वेद व्यास जी ने जब उनको निवेदन किया कि लिखने के लिए, तो गणेश जी ने अपने ही दांत को तोड़े और उस दांत को लेकर कलम बनाकर उन्होंने साहित्य रचना शुरू की। इसलिए गणेश जी का एक नाम है एकदत्त। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मां। तो इसलिए ऐसे कहा जाता है कि जो शॉर्ट हैंड जो इन्वेंट्री है, जो शॉर्ट हैंड की उत्पत्ति गणेश जी के द्वारा हुआ है, इतने फास्ट वो उन्होंने कम समय पर उन्होंने ये सारे साहित्य की रचना की। तो वैसे इस साहित्य को संपन्न करने के लिए वेद व्यास जी को भगवान ने अपना विशेष शक्ति प्रदान किया, इसलिए वेद व्यास जी को कहते शक्तियावेश अवतार, शक्ति आवेश, शक्ति आवेश हुए उसमें उनको इस कार्य को उन्होंने संपन्न किए। तो कैसे किए? वेद व्यास जी अपने चित्त को एकाग्र करते हुए, बड़ा वजन धारण नहीं कर पा रहा हूं। तो वेद व्यास जी जिन्होंने अपने चित्त को एकाग्र करते हुए उन्होंने जो वायुमंडल में उन्होंने पूरे साहित्य के जो शब्द ध्वनि जो छुपी हुई थी उसको उन्होंने ग्रहण किया। तो वो कैसे? वेद व्यास जी ने अपने चित्त को एकाग्र कर इस वायुमंडल से उन्होंने पूरे साहित्य के ज्ञान को प्राप्त किया। अब कैसे? क्योंकि वायुमंडल में सभी प्रकार के ध्वनि छुपी हुई है, तो उस ध्वनि जो होती है कभी मरती नहीं है या उसका नाश कभी नहीं होता है, ध्वनि जो होता है घूमता रहता है। जैसे ऐसे बताया जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में जो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता जो सुनाया अर्जुन को, तो वो जो ध्वनि जो है उस ध्वनि को पकड़ने के लिए जर्मन के कई वैज्ञानिक लोग आकर वो कई प्रकार से उन्होंने मशीन वगैरह लगवा कर वो ढूंढ रहे ये ध्वनि कहाँ है ऐसे तो वो जो ध्वनि जो होती है ध्वनि का कभी नाश नहीं होता। ये ध्वनि को आप जब कुछ कहेंगे तो ध्वनि वहीं पर ही घूमती रहती है। इसलिए जब कोई अपशब्द कहते हैं तो अपशब्द कहने से वो ध्वनि भटकते भटकते उसी को ही नुकसान करती है जिस व्यक्ति ने कहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो वहां के जो जो आदिवासी जो होते हैं उन्हें अगर बड़ा कोई एकदम भारी पेड़ होगा उसे अगर काटना होगा तो उससे क्या उनके पास इतना मशीन वगैरह नहीं हुआ होता है, तो उन लोग उसी पेड़ के ऊपर उस पेड़ को खूब गालियां देते और इतनी गालियां देते इतनी गालियां कि उनके शब्द शब्द ध्वनि की शक्ति से वो पेड़ सूख कर उन्मूलित होके गिर पड़ता है। तो ये शब्दों में ऐसी शक्ति है। ये शब्द जैसे कि अभी यहां पर हमें कुछ ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन आप रेडियो चालू कर दो, रेडियो का थोड़ा जो नॉब है वो थोड़ा जैसे जैसे घूमेगा वैसे दिस इज रेडियो मिर्ची तो तुरंत उसमें ध्वनि आ जाएगी। अभी हमें ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन जब वो नॉब जब पकड़ता है वायुमंडल के ध्वनि को तो तुरंत वो दे देती है। तो वो कैसे संभव है? वो उस ध्वनि को पकड़ता है वो यंत्र के द्वारा, उस यंत्र के आधार पर उस ध्वनि को पकड़ा जाता है। जैसे मोबाइल जब बात करते हैं तो जो बगल में खड़ा है उसे सुनाई नहीं देगा, लेकिन वो यंत्र जो मोबाइल जो है वो उस ध्वनि को पकड़ता है। ठीक इसी तरह वेद व्यास जी ने भी, उन्होंने भी अपने मन का जो नॉब है उनको ऐसे एकाग्र किया कि उन्होंने पूरे साहित्य को उन्होंने ग्रहण कर उनको विभाजित किया, विभाजन किया। तो वैसे उन्होंने चार भाग में विभाजन किया और उन्होंने कई, जैसे आगे वर्णन आएंगे कि उन्होंने किन किन लोगों को ये अलग अलग ये सिद्धांत दिए, तो उसमें से जो पुराण जो ज्ञान था वेद व्यास जी ने रोमहर्षण को दिए और रोमहर्षण ने इस ज्ञान को अपने पुत्र सुत गोस्वामी को दिए। और वैसे ही ये परंपरा जो कि हमारे श्रीमद् भागवतम की परंपरा, वही सुत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के ऋषियों को सुनाया। तो वैसे वेद व्यास जी ने इस अद्भुत कार्यों को कर दिखाया और इनके जो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है सत्यवत्यम पराशरात, यानी कि सत्यवत्यम पराशरात, यानी कि जो कि सत्यवती माता जो है उनके द्वारा, सत्यवती गर्भ से उनका प्राकट्य हुआ। और उनके पिता के नाम, वेद व्यास जी के पिता का नाम था पराशर मुनि। अब पराशर मुनि के पिता जो है उनका नाम है महर शक्ति, ये महर शक्ति, और उनकी माता का नाम है अदृश्या। तो महर शक्ति जो थे इनको किसी ने मार दिया था, किसी असुर ने इनका वध कर दिया था। और जब पराशर मुनि जब जन्म लिए तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, तो बड़े शक्तिवान थे, तपस्वी थे, तो पूरे विश्व को नाश करने के लिए जब जा रहे थे तब वशिष्ठ मुनि ने उन्हें रोक दिया, बोला कि ऐसे मत करो, ये ठीक नहीं है, थोड़े शांत हो जाओ। और फिर उसके पश्चात उन्होंने सोचा कि इस भूमंडल में जितने भी असुर है सबको मैं मार दूंगा। और जब वो भूमंडल के असुरों को मारने के लिए गए तब वहां पर पुलस्त्य ऋषि आ गए और उन्होंने उनको कहा कि ये भगवान की व्यवस्था है, उस भगवान की व्यवस्था को आप इस प्रकार उसे व्यवस्था को रोको मत या उस व्यवस्था को ठीक से चलने दो। इस प्रकार उनको निवेदन करते हुए पराशर मुनि उस विचार को छोड़ दिए। एक समय की बात थी कि पराशर मुनि जब नौखा से जब जा रहे थे तो सत्यवती जो थी इनके पिता, ये क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो नौका में बिठाकर उन्हें लेकर जाते थे लोगों को। तो ऐसे हुआ कि पराशर मुनि एक बार आए और उन्होंने कहा कि मुझे भी पार लगा दो। तो सत्यवती बैठी थी नौका में, तो वो उन्हें लेकर जा रही थी और बीचों बीच जो कि नदी के बीच में पराशर मुनि को सत्यवती के प्रति उनका स्नेह भावना उत्पन्न हुआ और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे द्वारा एक संतान उत्पन्न हो। और इन्होंने कहा मैं तो कुवारी हूं और यह संभव नहीं है, मैं अपने पिता की आज्ञा के बगैर कार्य नहीं कर सकती। तो इन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जो कुवारी जो अवस्था है उस पर नुकसान नहीं होगा, या तुम उसके गर्भवती होने के बाद भी तुम उसी प्रकार युवक रहोगी और साथ ही साथ में तुम्हारे शरीर में जो मत्स्य गंध जो आ रहा है, जो उनके शरीर से मच्छी की गंध आती थी, अब ये मच्छी का गंध इसलिए उनके शरीर से आया करता था क्योंकि इनका जन्म हुआ एक मत्स्य के गर्भ में। अब ये मत्स्य के गर्भ में एक ऋषि थे जिनका नाम था उपचार वसु, ये एक वसु है, एक देवताओं में एक सेक्शन है जो कि वसु है, और उस वसु में ये उपचार वसु जो थे इनके हृदय में जब विषय भोग की जब कामना आई तब उनकी ऊर्जा जब स्खलित हुई तो उसी ऊर्जा को एक मच्छी ने धारण किया और उस मच्छी के गर्भ में ये सत्यवती देवी जो है उनका जन्म हुआ और उस कारण से उनके शरीर से मत्स्य जो कि मच्छी के गंध आते थे। तो इन्होंने पराशर मुनि ने कहा कि तुम्हारे शरीर का जो गंध है ये भी हट जाएगा, इतना ही नहीं सुगंध आना शुरू होगा। तब ये मान गई, स्वीकार ली और उसके पश्चात सत्यवती के द्वारा जो कि पराशर मुनि के समागम के बाद वहां पर एक संतान हुआ, जैसे ही उन्होंने जन्म लिया वेद व्यास जी, जन्म लेते ही वो अपने माँ को छोड़कर उन्होंने कहा माँ से परमिशन या माँ से अनुमति लेकर वो जंगल की ओर निकल पड़े तपस्या के लिए और उन्होंने कहा जब भी आप मुझे याद करोगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो लोग इस प्रकार ये तर्क भी रखते हैं कि वो वेद व्यास जी जो कि अवैध संगति के द्वारा जिनका जन्म हुआ उसको कैसे लोग स्वीकारेंगे, आचार्य कहेंगे, लेकिन वास्तविक श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर ये अवैध संगति अगर कोई इस प्रकार नकल भी करना चाहता है तो उन्हें पराशर मुनि की जैसे शक्तिवान भी होना चाहिए जो कि यह संभव नहीं है। तो वेद व्यास जो भगवान के भक्त जो जन्म लेते हैं और जो साधारण जीव जन्म लेते हैं उसमें बहुत अंतर है। भगवान और भगवान के भक्त जब भी जन्म लेते हैं तो उसे कहते हैं कारण जन्म और हमारा जो जन्म होता है वो है कर्म जन्म। और इसीलिए हमारे जन्म को चक्कर काटने के लिए हम यहाँ पर जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान और भगवान के भक्त लोग किसी कारण के लिए आते, कुछ हेतु के लिए आते और वो थे वेद व्यास जी का जो कारण जो था वो था साहित्य की रचना करना। और जब इन्होंने जब जन्म ले लिए तब सत्यवती ने एक समय उनके वंशावली जब आगे नहीं बढ़ रहे थे, उनके पुत्र का जब देहांत हो गया अब कोई वंशावली आगे बढ़ाने के लिए नहीं था, तो अंबालिका और अंबिका दो उसकी बहू थी लेकिन कोई पति नहीं थे। तब उन्होंने भीष्म पितामह को निवेदन किया कि कृपा करके आप इनसे विवाह करिए। सत्यवती ने उन्होंने निवेदन किया तो सत्यवती के इस प्रस्ताव को भीष्म देव ने कहा हिमालय के सारे जितने भी बर्फ है सूख जाए, समुन्द्र की पानी सारे खत्म हो जाए, लेकिन मैं अपने व्रत से नहीं चुकूंगा। मैंने ब्रह्मचारी का व्रत लिया हो रहेगा और कुछ और उपाय देखिए। तब भीष्म पितामह ने कहा कि हे माते, जब भी इस प्रकार की जब समस्या आती है तब ब्राह्मणों को निवेदन किया जाता है और ब्राह्मणों के द्वारा उनको संतान उत्पत्ति के लिए कहा जाता है। तो ऐसे शास्त्रों में इस प्रकार वर्णन है। तब उन्होंने जब इस प्रकार निवेदन किए तब सत्यवती को ये ध्यान आया कि उनके पुत्र को बुलाया जाए। तो वेद व्यास जी को बुलाने के लिए भीष्म पितामह से पूछा कि आपको इसमें कोई ऐतराज है? भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर कहा बुलाइए उन्हें। तो वेद व्यास जी आए और वेद व्यास जी आए तब उन्हें ये निवेदन करते हुए कहा कि संतान उत्पत्ति के लिए आप वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करिए। तब उस समय वेद व्यास जी ने अंबालिका आई थी उसके पास, तब उस समय अंबाली के गर्भ में वो अपने अंबाली के जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अंबाली को जब गर्भवती करने के लिए जब वेद व्यास जी ने अपनी दृष्टिपात की तो वो डर गई और आंखें बंद कर दी। तो क्योंकि डर कर आंखें बंद की इसलिए उनको एक पुत्र हुआ जो कि अंधा निकला। तो बोले ये तो अब क्या करें। तब दूसरे को भेजा तो अब आई अंबिका। अब जब अंबिका आई तब उन्होंने अंबिका को जब दृष्टिपात किए तो अंबिका भी उस समय घबरा गई, और जब घबरा गई तो घबरा कर वो उन्होंने उसको देखी। तो यहां पर वेद व्यास जी ने कहा कि अब पांडु रंग का पुत्र उत्पन्न होगा। तो सत्यवती कहने लगी अंबिका को कि अंबालिका को कि फिर एक बार फिर से जाओ। तो उन्होंने क्या कि वो उन्होंने उसको हा हा बोलकर उन्होंने दासी को भेज दी, तू जा। अब जब दासी आई तो दासी के हृदय में पूरी तरह सेवा की भावना होने के कारण उन्होंने वेद व्यास जी को देखकर घबराई नहीं, और जबकि उनको सेवा भाव सेवा उन्होंने बड़े अच्छी तरह की, और वैसे उनको एक संतान हुआ जो कि धर्म पुत्र बना, और वो थे स्वयं यमराज जो कि विदुर जी के रूप में आए थे। स्वयं यमराज भी कृष्ण लीला में भाग लेने के लिए इस मार्ग से आए। तो वैसे यहां पर बताया जाता है कि जो संतान जो उत्पन्न होता है उसका मूल जो असर जो चेतना का जो असर पड़ता है उसकी माता का पड़ता है। अगर पुरुष अगर भले ही बहुत गुणवान है लेकिन स्त्री अगर उसके अंदर कुछ त्रुटि होगी तो संतान भी वैसे ही निकलेगा। अगर पुरुष अगर नालायक है लेकिन स्त्री अगर बहुत ही विवेक वाली स्त्री होगी तो उसका जो पुत्र जो जन्म लेगा बड़ा ही विद्वान होगा, क्योंकि स्त्री जो होती है वो फिल्टर के समान माना जाता है संतान उत्पत्ति के लिए। तो वैसे यहां पर वेद व्यास जी के द्वारा जो संतान उत्पन्न हुआ और ये दो निकले, एक था धृतराष्ट्र जो पूरी तरह शुरू से अंत तक लोभी था, और इस तरह उनके वेद व्यास जी के द्वारा सत्यवती ने इस प्रकार को क्रियाओं को संपन्न किए थे। तो यहां पर वही वेद व्यास जी जो कि जिसे यहां पर बताया गया है कि वो स्वयं 17वें अवतार है भगवान के। तो हमारा समय भी हो गया। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते।